ഹരി കൃഷ്ണ. അഥ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗോ നാം ചതുർത്ഥോധ്യായഃ. അധ്യായ 4 ദിവ്യ ജ്ഞാനം, പ്രഥം ശ്ലോക. കൃപയാ ഇസ് അദ്ഭുത ജ്ഞാന കി ഇൻ പവിത്ര ശബ്ദോ കോ മേരെ സാത്ത് സാത്ത് ഉച്ചാരണ കർനെ കാ പ്രയാസ് കീജിയേ. ഭഗവാൻ കെ മുഖാരവിന്ദ് സേ നിക്ലി ഹുയി യേ ദിവ്യ ജ്ഞാന കി ഗംഗ ഹൈ. കൃപയാ ഹം സബ് ഇസ്മേ ഭീഗ്നേ കാ പ്രയാസ് കർത്തേ ഹൈ. ശ്രീ ഭഗവാനു വാച ഇമം വിവസ്വതി യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവീപ്രാഹ മനുരിക്ഷവാ കവീബ്രവീത് 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 ഇമം വിവസ്വതി യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവീപ്രാഹ മനുരിക്ഷവാ കവീബ്രവീത്. ശബ്ദോ കാ അർത്ഥ ദേഖിയെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച, മത്ലബ് വോ ഭഗവാൻ ജോ ഷഡൈശ്വര്യോ സേ യുക്ത ഹൈ വോ അബ് ബോൾ രഹേ ഹൈ, ക്യാ കഹ രഹേ ഹൈ. ഇമം വിവസ്വതി യോഗം, ഇമം മന ഇസ് മത്ലബ് ജോ യേ ജ്ഞാന കി ജോ ദിവ്യ ജ്ഞാന ഹൈ ഉസ്കേ വിഷയം ഭഗവാൻ കഹ രഹേ ഹൈ. വിവസ്വതി യാനി സൂര്യദേവ്, യേ സൂര്യദേവ് കാ നാമ ഹൈ വിവസ്വാൻ. വിവസ്വതി യോഗം യാനി പരമേശ്വർ കെ സാത്ത് അപ്നെ സംബന്ധ കി വിധി കോ, യേ ജോ ഭഗവാൻ കെ സാത്ത് യോഗ, യോഗ മന ജുഡന, ഇസ് യോഗ കാ ജോ ജ്ഞാൻ ഹൈ. പ്രോക്തവാന യാനി ഉപദേശ ദിയാ ഥാ അഹം, അഹം അവ്യയം യാനി യേ അമര ജ്ഞാൻ ഹൈ. ഔർ ഇസ്കാ ഉപദേശ മേനെ സബ്സെ പെഹ്ലെ കിസ്കോ ദിയാ ഥാ, സൂര്യദേവ് കോ ദിയാ ഥാ. ഔർ ഉസ്കേ ബാദ് വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ, വിവസ്വാൻ മത്ലബ് വിവസ്വാൻ യാനി സൂര്യദേവ് നെ, മനവേ യാനി മനുഷ്യോ കെ പിത. അബ് മനു ജോ ഹോതേ ഹൈ, ജിസേ ഹം ജാൻതേ ഹൈ കി ഏക് മൻവന്ത്ര മേ ഏക് മനു ഹോതാ ഹൈ, ഔർ ഹർ കൽപ്പ മേ 14 മൻവന്ത്ര ഹോതേ ഹൈ. തോ അഭി ജോ ഹമാര മൻവന്ത്ര ചൽ രഹാ ഹൈ, ഉൻകേ സാത്വാ മൻവന്ത്ര ചൽ രഹാ ഹൈ, ഔർ ഉൻകേ മനു കാ നാമ ഹൈ വൈവസ്വത്, വൈവസ്വത് ഹാ, വൈവസ്വത് മനു ജോ യഹാ പർ ലിഖാ ഹുവാ ഹൈ. തോ ഭഗവാൻ നെ സൃഷ്ടി കെ ആരംഭ മേ യേ യോഗ ജോ ഹൈ സൂര്യദേവ് കോ ദിയാ, ഔർ സൂര്യദേവ് നെ ഫിർ മനു കോ ദിയാ, ഔർ यहाँ पर लिखा विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को कहा और मनु इक्ष्वा कवि अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वा को यह ज्ञान बताया. अनुवाद देखिए. भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सहगणरघुनाथन् वितं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता माता की जय हो। आज भगवान श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान की परंपरा के विषय में बता रहे हैं कि परंपरा कैसे स्टार्ट हुई। भगवान ने कहा इमं विवस्वते योगं प्रोक्त वाहनम अव्ययम्। ये जो दिव्य ज्ञान है वो सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया। विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत के पहले विवस्वान ने किसको दिया? अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र विवस्वान ने इक्ष्वाकु को दिया और विवस्वान मनवे प्राह विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह से ये दिव्य ज्ञान की परंपरा प्रारंभ हुई और इस तरह से जो राजा ऋषि है ना वो राजा लोग को ये ज्ञान दिया जाता। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है राजा लोग को क्यों दिया जाता था? वो इसलिए क्योंकि राजा लोग क्या करते हैं, वो संसार का शासन करते हैं। ठीक है, अगर राजा को ज्ञान होगा और वो उस ज्ञान के अनुसार कार्य करेगा तो सारी प्रजा को वो कार्य करना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे अगर किसी राजा को ये ज्ञान है कि ना जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, ठीक है, और कृष्ण प्राप्ति के लिए आपको रोजाना 16 माला करनी है, तो वो ऐसी है ना योजना बनाएगा कि मुल्क का हर नागरिक, जो हमारा कंट्री है उसका हर नागरिक रोजाना 16 माला करे, तो फिर उनको यह है ना सबको ये, जैसे राजा का अगर आदेश होगा तो सबको ये पालन करना पड़ेगा। अगर राजा के अंदर बुद्धि नहीं होगी, वो समझेगा ही नहीं कि भक्ति के विषय में कुछ उसको पता नहीं होगा, तो फिर वो इस तरह के आदेश। पहले ऐसे होता भी था कि जो राजा होते थे वो, हम एकादशी कथा में पढ़ते ना कि राजा क्या करते, सारे ना अपना जो सारा सिटी है, अब मुल्क है ना जितना, उसमें ये ऐलान कर देते थे कि सबको एकादशी रखनी है, इस दिन कोई भी अनाज पकाएगा नहीं, और इस दिन ना तपस्या करने की होती है, ये ग्रहण के बाद है ना सब लोग यहाँ पर स्नान करने आएंगे। तो मतलब इतना राजा को जब ज्ञान दिया जाता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि सारी प्रजा को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो भगवान ने कहा ये ज्ञान राजाओं को मैंने दिया। अभी भी देखो कहना अर्जुन को दे रहे ना भगवान, क्योंकि अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय राजा बनते ना, तो क्षत्रिय को जब पता होगा तो फिर उनकी प्रजा, अगर राजा सही है ना, यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा भक्त होगा और है ना दिव्य ज्ञान के अनुसार कार्य करेगा तो फिर प्रजा ऑटोमेटिकली वो कार्य करेगी। आजकल राजा ही सारे है ना वो, अब क्या किसी के बारे में बोले तो फिर उनको नहीं होता, तो प्रजा भी सारी ऐसी है। तो भगवान बता रहे हैं आज के, मैंने सबसे पहले शासक है सूर्य देवता, वो पूरे संसार में शासन करने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के आने से जीव जागता है, उन्हीं के प्रकाश से हम कार्य करते हैं। तो सबसे पहले यह ज्ञान भगवान ने सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया। अब मनु को देने की क्या, क्योंकि उनके सारे पुत्र, अगर पिता को पता नहीं होगा तो सारे पुत्र को भी पता नहीं होगा ना ज्ञान, कि उनको भी पता नहीं होगा, तो फिर पिता, अभी आज भी देखें हम लोगों को कुछ पता नहीं है दिव्य ज्ञान के विषय में, उसकी मेन वजह क्या है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं बताया। अगर पेरेंट्स शुरू से ही पता होता, पहले क्या होता था, दिव्य ज्ञान माता पिता को पता ही होता था, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्टेज में सब गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल में ब्रह्मचर्य सीखता था और फिर उसके बाद गृहस्थ बनता था, तो वो सारे अपने, अब गृहस्थ बन गया तो पहले ब्रह्मचर्य के 25 साल तक उसने जो दिव्य ज्ञान दिमाग के अंदर भरा है वो सारा ही उसी का ही तो उसको उपयोग करना है। आज हम ब्रह्मचर्य अवस्था में कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं करते, भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो अपने बच्चों को भी यही बताते कि बेटा तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बताओ क्या है, पढ़ लिख कर आपको बड़ा आदमी बनना है, बहुत धन कमाना है, फिर एक अच्छी सी लड़की से आपको शादी करनी है, घर खरीदना है बहुत खूबसूरत, एक गाड़ी खरीदनी है, और फिर बच्चे पैदा करना है, और मेरी तरह ही अपने जीवन का सत्यानाश करना है जैसे मैंने अपने जीवन का सत्यानाश किया है, लानत भरा जीवन गुजारा खुद भी और तुम्हें भी वही करना है। भगवान की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य थोड़ी है, वो तो दादाजी को करने दो, अभी दादाजी ने भी तुम्हारी तरह ही अपने जीवन का गुजारा था, तो आज उसको भगवान दिव्य ज्ञान कहाँ से समझ में आएगा 50 साल की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद। तो यह विधि जो है वो चैतन्य श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं प्रहलाद महाराज बताते, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान, यह ये जो भगवान को प्राप्त करने की जो भागवत विधि है वो बचपन से ही सिखानी होती है अपने बच्चों को, लेकिन सिखाएंगे कैसे जब माता पिता ने सिखा ही नहीं। लेकिन भगवान ने कहा मैंने तो मनुष्यों के पिता मनु को ये बात बता दी थी पहले ही, क्योंकि सूर्य देवता ने मनु को बताया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, क्योंकि इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे और बाकी सारे संतानें उनकी है ना अंदर, मतलब उनकी संतानें होंगी, तो फिर इसने उनको भी अपने बेटे को भी बताया। इस तरह से ये दिव्य ज्ञान की परंपरा चली थी। उसके बाद भगवान बताएंगे कि वापस मैं क्यों बता रहा हूँ, लेकिन इसमें यहाँ तक पता है तो हम पहले श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है, यह अत्यंत ही प्राचीन बताया गया है। जब से इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था, यानी कि सबसे पहले सूर्य देव को जो संपूर्ण लोकों के राजा है, संपूर्ण लोकों पर सूर्य का राज है, उनको बताया गया। और उनको बताने का कारण यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते कि समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः राजन वर्ग को भगवत गीता की विधियों विद्या को समझना चाहिए, जिससे वह नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। क्योंकि यह योग है, भगवान के साथ कर्म योग के विषय में बता रहे हैं। तो अगर राजा को पता होगा तो शासन करेंगे, अपने नागरिकों को भी काम रूपी भवबंधन, क्योंकि भगवान ने क्या बताया, काम रूपम दुरासदम, ये बहुत ही खतरनाक शत्रु है, विद्येनमि हवैरिणम। तो अगर राजा को पता होगा तो वो अपने नागरिकों को भी यही बात बताएगा और इस तरह से वो भवबंधन से छूट जाएंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति सुंदर शब्द बता रहे हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासन अध्यक्षकों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। जीवन का लक्ष्य भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना है। अगर राजा को ये खबर होगी तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते सारे शासन अध्यक्षकों यानी सारे जितने भी राजा हैं उनको चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाए, कि सारे नागरिकों को ये बताए कि आपके जीवन का लक्ष्य कुत्तों और गधों की तरह कार्य करके जीवन आहार निद्रा और भाई मैथुन में खत्म करने के लिए नहीं बना है, बल्कि इसके लिए आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है और भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना है। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जितना इस महाविद्या का लाभ उठा सके, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। श्री प्रभुपाद जी बोलते सारे राजाओं को यह कार्य करना पड़े चाहिए कि प्रचार करे भगवान की कृष्ण भावनामृत की विद्या का, और इसे अगर राजा करेगा तो जनता इस बात को एक्सेप्ट करेगी, महाविद्या का लाभ उठा सकेगी और इस तरह लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का यानी कि वास्तव में आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसको उसके अनुसार कार्य करेगी। इस मन्वंत्र में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों यानी लोकों का उद्गम है। अब इस मन्वंत्र में अलग अलग मन्वंत्रों में सूर्य का भी नाम अलग अलग होता है, तो इस मन्वंत्र में सूर्यदेव का नाम क्या है, विवस्वान, और वो समस्त जो सौर मंडल है यानी कि जो सोलर सिस्टम है सारे जितने भी ग्रह हैं तो सूर्य से प्रकाशित होते हैं, तो सूर्य उनका उद्गम है। आगे श्री प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता के श्लोक के विषय में बता रहे हैं, 5.52 में कहा गया है, सूर्य के विषय में कहा गया है, बहुत ही सुंदर है। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति राशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संव्रत काल चक्र गोविंदमादि पुरुषं तमः भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां, में जो गोविंद है भगवान है, जितने भी सूर्य मंडल के ग्रह हैं वो सारे सूर्य से प्रकाशित होते हैं, लेकिन वह सूर्य उन भगवान के या चक्षुरेश सविता उन भगवान के नेत्र के तुल्य है और उनकी आज्ञा के अनुसार ही सारे लोक जो है वो अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं और जो उनका उनके होते हैं ना कक्षा उनमें घूमते हैं। यानी ब्रह्मा जी ने कहा मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है, यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। यानी कि भले सूर्य से सारे ग्रहों को प्रकाश मिल रहा है, लेकिन वह प्रकाश सूर्य कहाँ से प्राप्त कर रहा है, केवल कृष्ण से, इसलिए क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से समस्त लोग जो है वो अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं, तो ऐसे मैं डायरेक्ट से उन्हें भगवान की उपासना करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सूर्य सभी लोगों के राजा हैं तथा सूर्य देव यानी विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करते हैं, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। अब सूर्य क्या करता है, सारे लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है और सूर्य कृष्ण के आदेश पर ही घूमता है। यज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्र, ये जो काल चक्र है ना, दिन और रात होते हैं वो सूर्य के होने पर होते हैं, और ये सूर्य किसके आदेश का पालन कर रहा है, गोविंदम आदि पुरुषम, उन्हीं गोविंद की आज्ञा के अनुसार वो कार्य करता है। और भगवान कृष्ण, और फिर भगवान कृष्ण ने विवस्वान को श्रीमद् भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। पहले शिष्य भगवान के कौन थे, सूर्यदेव विवस्वान। ये भगवद गीता उन्होंने पहले सूर्यदेव को सुनाई थी। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए नहीं, कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, ये काल्पनिक नहीं है कि भाई ये लिख दिया, दो मित्र आपस में बातें कर रहे थे, एक ने बोला मुझे लड़ाई नहीं करनी है, दूसरे ने बोला लड़ाई करो, तो इस तरह का कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चलता आ रहा है। इसकी अनंत काल से, मतलब जब से सूर्य है तब से यह ज्ञान जो है वो उसकी परंपरा चल रही है। तो ये कितना विशाल है और कितना असाधारण है, इसको असाधारण नहीं लेना है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, महाभारत में शांति पर्व 348.51 से लेकर 52 तक हमें भगवद गीता के इतिहास इस रूप में प्राप्त होते हैं। कैसे पता चलते हैं भगवद गीता के इतिहास, वहां पर महाभारत में आगे श्लोक है जिसमें बताया गया, त्रेता युगादो चतो विवस्वान मन विदो मनुष्य लोक वृत्त्यर्थम सुताक्ष्वाक विदो इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थित। त्रेता युगादौ चतो, यानी कि त्रेता युग के आरंभ में, आदो मतलब उसकी स्टार्ट में, विवस्वान मन वेदतो, फिर त्रेता युग, पहले तो भगवान ने विवस्वान को दे दिया, फिर त्रेता युग का जब आरंभ हुआ था उसके जो मनो है उसमें, जैसे अनुवाद देखिए, त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनो को दिया था। त्रेता युगादौ चतो विवस्वान मन वेदतो, फिर विवस्वान ने मनो को दिया, मनुष्यों के जनक मनो ने इसे मनुष्य लोक वृत्त्यर्थम सुताक्ष्वाक वेदतो, फिर उन्होंने क्या किया, मनुष्यों के जनक हैं उन्होंने किसको दिया, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और आगे इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थित, इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे, मतलब वो राजा थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे। पूर्वज है ना, ये इक्ष्वाकु वंश भी बोलते हैं इसको, रघुकुल को, तो जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही श्रीमद् भगवद गीता विद्यमान है। यानी कि पहले तो भगवान ने सूर्य लोक को जब दिया था तब भले सत्युग था ना, तब सत्युग में ना शायद इतना, मतलब सत्वगुण इतना था कि दिव्य ज्ञान, वैसे ही सब लोग दिव्य ज्ञान के अनुसार ही कार्य करते थे। लेकिन जैसे ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तो जो मनु है, जो समस्त संसार के पिता है, उन्होंने देखा कि अब युग बदल गया है तो मनुष्यों की जो है ना वृत्ति भी चेंज होगी, तो फिर उन्होंने वहां त्रेता युग के आदि में स्टार्ट में सूर्य देव ने मनो को दिया और फिर मनो ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से ये परंपरा इतनी पुरानी चल रही है, इतना प्राचीन परंपरा श्री प्रभुपाद जी भगवद गीता की महानता के विषय में यहाँ पर भगवान ने बताया है। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास समझाएंगे, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। ठीक है, कलयुग की टोटल आयु 4,32,000 है और उसमें से कितने हो गए, 5,000 साल हो गए, यानी 4,27,000 अभी तक कलयुग के बाकी हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने ना बहुत ही मोटा मोटा उदाहरण लिखा है। देखिए अगर वैसे अगर देखा जाए तो द्वापर की उम्र कितनी, 8,64,000, यानी 4,32,000 का डबल। लेकिन यहाँ पर जैसे संक्षिप्त में बताया तो हम इसी के अनुसार पढ़ते हैं जो भगवद गीता में लिखा है, एज इट इज पढ़ेंगे कि इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्षों का था। ठीक है, और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्षों का था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु को, जो इस कत्थी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही थी। यानी अगर बहुत ही मोटा उदाहरण भी दिया जाए तो भी 20,05,000 साल हो गए, जिसमें सबसे पहले मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया था। श्रीमद् भगवत गीता को आए हुए 20,05,000 साल इस पृथ्वी पर हो गए। कोई लोग बोलते हैं ना कि श्रीमद् भगवत गीता तो आधुनिक शास्त्र है, बाकी वेद इतने पुराने, लेकिन सब भगवत गीता का इतिहास यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कितनी पुरानी है। सबसे पहले तो अभी तो ये 20,05,000 साल पहले तो किसको दिए, मनु को दिए जो त्रेता युग में थे, लेकिन सूर्य देवता को उससे भी पहले दी थी। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के विषय में और भी बताया जा रहा है कि वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,43,00,000 है। ठीक है, जो अपना मनु चल रहा है वैवस्वत मनु, उसकी आयु क्या है, 30,43,00,000 वर्ष है। और अनुमानित की जाती है, यानी कि ऐसा ही सोचा जाता है या शास्त्रों के अनुसार अनुमान किया गया है कि उनकी आयु कितनी है, 30,43,00,000, जिसमें से 12,04,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। टोटल 30,43,00,000 थी, उसमें से 12,04,00,000 हो गए। ये मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, तो मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,04,00,000 वर्ष पहले कही गई है। यानी कि टोटल भगवद गीता जो भगवान ने सूर्यदेव को दी थी वो पहले 12,04,00,000 वर्ष हो चुके हैं, यानी 5,000 साल पहले तो हमें बताई है ये, लेकिन उससे पहले पहले सूर्यदेव को दी, सूर्य ने मनु को दी, मनु ने इक्ष्वाकु को। तो मोटा अनुमान क्या लगा श्री प्रभुपाद ने कि 12,04,00,000 वर्ष पहले कही गई। और मानव समाज में ये 20,00,000 वर्ष से विद्यमान है। मानव समाज में कैसे, जब उन्होंने पहली बार मनु को बताया था त्रेता युग में, तो 20,00,000 वर्ष हो गए उसको मनुष्यों के समाज में। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन ने पुनः कहा था। अब वापस द्वापर युग के अंत में जब कलयुग का स्टार्ट हुआ था तब वापस से रिफ्रेश किया था उसको। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार यह श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास का मोटा अनुमान है। यानी कि ये थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया है कि वैसे तो 12,04,00,000 साल पहले संसार में आई है, लेकिन 5,000 साल पहले उसको वापस से रिफ्रेश करके भगवान ने बताया। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है ना। जो विवस्वान को इसलिए बताया कि सूर्यवंश में अब जो भी उत्पन्न होंगे तो उनके पिताजी को पता होगा, तो इस तरह से सीरीज में ये ज्ञान परंपरा से आता रहेगा। चूंकि श्रीमद् भगवद गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा। अब वेद का क्या है, वेद का क्यों उसको स्वीकार किया जाता है, क्योंकि भगवान से आया इसे। अब भगवान ने ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया, फिर इस तरह आते आते वापस से भगवान ने रिफ्रेश करके अर्जुन को दिया, तो ये वेदों के ही समान है। गीता वेद एक वेद ही है, क्योंकि भगवान से, भगवान के मुख से जो निकलता है उसी को वेद बोलते हैं। और अतः यह ज्ञान अपौरुषीय है, यानी इंसानों की अकल से बहुत आगे है। ये कोई साधारण व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, ये भगवान ने साक्षात्कार श्रीमद् भगवद गीता को दिया है। तो चूंकि वैदिक आदेश को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। वैदिक आदेश को कैसे स्वीकार किया जाता है, एज इट इज यथा रूप में। वेदों में कह दिया, वैसे शास्त्र कहता है कि मल अपवित्र है, यदि मल स्पर्श हो जाए तो स्नान करके फिर भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, लेकिन गौमल को शुद्ध कहा गया कि ये यज्ञ में भी यूज होता है, तो वेद ने कह दिया तो हमें एज इट इज उसको स्वीकार करना पड़ता है। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता को भी किसी मानविक सांसारिक विवेचना के बगैर ही एज इट इज स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से श्रीमद् भगवद गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु ये यथारूप श्रीमद् भगवद गीता नहीं है। यानी कि वो अगर अपनी मर्जी से श्रीमद् भगवद गीता के विषय में बोलते हैं तो वो एज इट इज तो नहीं हुआ। अतः श्रीमद् भगवद गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्य देव को कहा, सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया कि गुरु परंपरा से इसको स्वीकार करना चाहिए, जैसे यहाँ पर भगवान ने विधि बताई है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ, जिसमें श्री प्रभुपाद जी ने इतिहास बताया कि श्रीमद् भगवद गीता कैसे इस संसार में आई है, और भगवान ने भी यही बताया कि सबसे पहले मैंने इसको विवस्वान को बताया, विवस्वान ने यानी सूर्य देव को बताया। तो ये कितना अजीब लगता है ना कि अभी हम थर्ड चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ रहे थे, अब जैसे हम बोलते हैं कि गीता तो कन्वर्सेशन है, सीरीज में भगवान इसे बताते जा रहे हैं, तो अभी भगवान अर्जुन से लास्ट में क्या हुआ था, तो थर्ड चैप्टर के एंड में यदि हम देखें तो अर्जुन ने प्रश्न किया 36 में कि वो कौन है जो हमसे जबरदस्ती अपराध कराता है, हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी अपराध हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि वो काम है तुम्हारा, सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि अज्ञान के कारण यानी कि रजोगुण के कारण वो ढक जाती, आपकी जो पवित्र चेतना है वो ढक जाती है, जिसके कारण आप अपराध कर बैठते हो। और काम के रहने की जगह बताई कि इंद्रिया मन और बुद्धि में काम रहता है, तो फिर भगवान ने कहा तो फिर सबसे पहले आप इंद्रियों को कंट्रोल करो, क्योंकि जो स्थूल चीज है उसको पहले कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद क्या करो, एवं बुद्धि परम बुद्धवा, उसके बाद अपनी बुद्धि को परम के साथ जोड़ो और उस तरह से मन में मन को आध्यात्मिक स्तर पर सिद्ध करो, और इस तरह क्या करो, यही शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम, तो इस तरह से काम रूप के दुर्जयी शत्रु को आप जीत जाओ। तो यहाँ पर ये प्रश्न होता था, अब भी भगवान ये बता रहे थे, काम वासना का टॉपिक चल रहा था और भगवान बोल रहे थे कि बुद्धि से इसको वश में करो, तो अचानक ये सूर्यदेव कहाँ से आ गए बीच में, मतलब ये सूर्यदेव का यहाँ पर भगवान बता रहे हैं तो ये कैसे हो रहा है। तो अर्जुन के मन में भी ये सवाल आएगा, अभी अर्जुन वहां पे पूछेंगे कि जैसे अचानक से कभी हम बात कर रहे थे टॉपिक चेंज हो जाता है, तो हम समझते हैं कि अभी ये बताएंगे इसके बारे में, लेकिन जब भगवान ने सूर्यदेव का टॉपिक खत्म ही कर दिया और फिर अर्जुन को बताएंगे कि ये अब मैं तुमको बता रहा हूँ, तो फिर अर्जुन बोलेगा ये तो अभी मेरी बात हो रही है, सूर्यदेव का तो टॉपिक ही खत्म हो गया। तो भगवान से पूछेंगे अर्जुन कि सूर्यदेव तो पुराने थे, आप तो अभी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सवाल तो उठता ही है कि सूर्यदेव यहाँ पर आए कैसे, भगवान ने क्या ये संबंध क्या है, मतलब भगवान ये सीरीज में चल रहे हैं तो इस फोर्थ अध्याय का थर्ड अध्याय से क्या संबंध है। तो संबंध क्या है कि भगवान बता रहे हैं कि ये काम जिसको जीतने के लिए अर्जुन को थर्ड चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि के साथ परम के साथ अपना योग करो और उसके बाद ही तुम ना काम को जीत सकते हो, तो ये काम खाली तुम्हारा ही शत्रु नहीं है, ये तो जगत का शत्रु है, ये तो आदि से है। ये जो श्रीमद् भगवद गीता में काम को जीतने की विधि जो भगवान ने बताई है वो आज के कलयुग के मनुष्य के लिए नहीं है, ये काम वासना, मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा अच्छा दिखना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा अच्छा पहनना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा अय्याशी की लाइफ जीना चाहता हूँ, ये काम है। और ये काम केवल अर्जुन को बोलते हैं केवल तुम्हारा ही शत्रु नहीं है, ये तो जगत का शत्रु है, और ये काम ही है जो जीव को मुझसे दूर किए बैठे है, और जब तक जीव मुझसे दूर है तब तक उसका कल्याण नहीं होगा, और जगत का कल्याण करना मेरा उद्देश्य है, मैं जगत का पिता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबको यह काम वासना को जीतने के लिए बुद्धि प्रदान करूँ, और ये बुद्धि देने के लिए मैंने ये योजना सृष्टि की शुरुआत से ही किए। मैं आज थोड़ी पहली बार बता रहा हूँ तुमको कि काम को जीतो, ये तो मैंने शुरू शुरू में बता दिया था। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि काम वासना के से जूझने के लिए भगवान ने हमें यहाँ पर अकेला ही भेज दिया कि ठीक है जाओ जूझो तुम अपने काम के साथ और जो भी करना है करो जाके, और वासनाओं को पूरा करते करते बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहो। इसके लिए ये काम वासना के साथ युद्ध करने के लिए शस्त्र तो भगवान ने हमें स्टार्ट में ही दे दिया है। भगवान ने शाश्वत काल से ज्ञान दिया, यह ज्ञान इतना सनातन है, भगवान सनातन है और सनातन कृष्ण ने यह ज्ञान सनातन काल से दिया हुआ है। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जीव भले मुझसे बिछड़ कर या मेरी अवज्ञा करके संसार में आ गया है, लेकिन फिर भी भगवान बता रहे हैं भगवान की कितनी कृपा है। वो कह रहे हैं देखो मैंने पहले से ये बताना शुरू कर दिया, भगवान दिखा रहे हैं कि मैं कैसे धर्म सिखाता हूँ और कैसे धर्म की स्थापना करता हूँ। जब फिर भगवान बताएंगे आगे कि फिर मैंने बताया था शुरू में लेकिन फिर वापस से परंपरा टूट गई, फिर वापस इसको जोड़ रहा हूँ, तो ये भगवान की कृपा है कि वो जीव को बताते हैं कि तुम्हारा वास्तविक धर्म क्या है। वास्तविक धर्म क्या है, अभी हम लोग थर्ड में कर्म योग पढ़ के आए कि हर कार्य को कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना ही धर्म है। जीव काम वासना को जीतना ही धर्म है। ये काम वासना में जीते जीते जीव कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेगा, तो उसको जीतने के लिए भगवान ने बुद्धि स्टार्ट से ही दी है। आगे भगवान बोलेंगे कि तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आता है तो तुम्हें ना गुरु महाराज के पास जाना पड़ेगा उसको सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो भगवान अपनी करुणा दिशा रहे, यहाँ पर जो ज्ञान योग की महिमा बताई जा रही है कि ये जो दिव्य ज्ञान भगवान कह रहे मैंने बताया है, ये वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञानियों के ज्ञान की महिमा नहीं की जाती जिससे वो है ना इस निष्कर खाली ज्ञान सुषुप्त ज्ञान की ओर जो बढ़ते हैं, ये दिव्य ज्ञान की बात है। यानी कर्मयोग के अनुशीलन, अब देखो कर्मयोग करते 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 जब हम सुप्रीम पर्सनैलिटी तक हम पहुंचेंगे कि हम किसके लिए ये कर्मयोग कर रहे हैं, तो एक साक्षात्कार होता है कि वो कृष्ण है। और इस तरह से कर्मयोग के अनुशीलन से जब हम भक्ति में पहुंचते हैं, हृदय में भगवान का साक्षात्कार होता है, तो फिर क्या होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, हृदय के अंदर जो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है ना, उसी दिव्य ज्ञान की यहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं कि वो दिव्य ज्ञान कर्मयोग के जरिए से आपके हृदय में प्रकाशित होता है और ये प्रकाशित करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं करता हूँ लेकिन कब करता हूँ, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो कंटिन्यूस मेरे नाम का भजन करते हैं और मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं उनके हृदय में मैं ज्ञान मैं क्या करता हूँ। भगवान बहुत ही सुंदर बताते हैं 10.11 में, तेषामेवानुकम पाठम अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर तो किन पर, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, जो भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, उन पर अनुकंपार्थम विशेष अनुकंपा करके विशेष कृपा करके अहम अज्ञान जमतमा उनके हृदयों में वास करता हूँ और ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से अज्ञान जनक अंधकार को दूर करता हूँ। नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का प्रकाशित करता हूँ। भगवान कहते हैं जगत का कल्याण करना मेरा उद्देश्य है और मैं वो करता हूँ, लेकिन कोई जब प्रेम से श्रद्धा से मेरे नाम का श्रवण करता है, मेरी कथाओं का श्रवण करता है, मेरे नाम का जप करता है, तभी मैं उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता हूँ। फिर हृदय के अंदर जो भौतिक काम वासना है वो कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए हमें सदैव भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।